भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। पिछले दो हफ्तों से हम दूसरे अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ले रहे हैं और आज इसका भाग तीन है। इसके पश्चात एक और भाग इसका बाकी है, भाग चार। ये इसलिए हमने इतने विस्तार से लिया क्योंकि ये श्लोक और इस श्लोक से पहले जो भगवान ने बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत, हालांकि ये कहेंगे कि बहुत गूढ़ सिद्धांत, परंतु बहुत ही व्यावहारिक तरीके से इन दो श्लोकों के द्वारा प्रस्तुत किया है। और विशेष रूप से ये जो श्लोक है जिसमें जो अंतिम शब्द है प्रणश्यति, कि हम इस भौतिक संसार में कैसे गिरे हुए हैं, कैसे गिरे और कैसे गिरे हुए, और यदि हम भगवान के भगवद गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो गिरे रहेंगे। तो व्यावहारिक तरीके से भगवान ने हमें ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली प्रस्तुत किया है, हाउ वी फेल, हाउ आर वी फॉलन एंड हाउ विल वी रिमेन फॉलन इफ वी डू नॉट टेक द मैसेज ऑफ गीता थ्रू दिस पर्टिकुलर वर्स। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इसका विश्लेषण हमने इस प्रकार से लिया था, क्रोध से सम्मोहन, सम्मोहन से स्मृति भ्रमशात, तत्पश्चात बुद्धिनाश और अंततः प्रणश्यति। तो पिछले बुधवार को हमने क्रोध से कैसे व्यक्ति सम्मोह में गिरता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसा प्रभाव देता है जीव के ऊपर, एक ऐसी शक्ति है कि स्वयं भगवान गीता में कहे हैं कि कामयेश क्रोधयेश, ये दो चीजें रजोगुण समुद्भव। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तीसरे अध्याय में ये श्लोक है, अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा कि बिना इच्छा के जीव गलत कार्य में कैसे लगता है, उसकी इच्छा न होते हुए, और यदि हम इसी सिद्धांत को लें, अर्जुन के इसी प्रश्न को लें, जब अर्जुन पूछ रहे हैं अथ केन प्रयुक्ते प्रयुक्त होयम, कि क्या वो प्रेरित करता है जीव को कि जीव सद्बुद्धि से दुर्बुद्धि में चला जाता है। तो बिना इच्छा के गलत कार्य करना या फिर इच्छा अच्छे कार्यों की होती भी है साथ साथ, लेकिन फिर भी बुरे कार्य हो जाते हैं जीव के साथ। मन में इच्छा है कि कुछ अच्छा कार्य करूं, लेकिन शरीर जो है वो कुछ गलत कार्य करने में प्रेरित हो जाता है। तो इसके उत्तर में अब सोचिए कि ये एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन अर्जुन का हम सब के लिए, और इसके उत्तर में भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्ये नाम इह वैरिणाम, कि ये सबसे बड़ा शत्रु किसका, जीव का सबसे बड़ा शत्रु ये रजोगुण, जिसके द्वारा काम वासना और क्रोध ये दोनों चीज उस रजोगुण के द्वारा होती है। तो अब हम ये प्रश्न पूछे कि भाई हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सत्वगुण में रखने का, विशेष रूप से जब हम जो सिद्धांत है आध्यात्मिक सिद्धांत, जो चार नियम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, सत्संग इत्यादि, जब हम इसमें लगते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं अपने आप को उस रजोगुण से निकालकर सत्वगुण में डालने का, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इतना रजोगुण में क्यों पाते हैं, क्या कारण है? बाहर से प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी इतना रजोगुण में क्यों पाते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हम रोज अपने शरीर को धोते हैं, स्नान करते हैं, अलग अलग तरीके से मंजन करते हैं, तो मुंह को साफ करते हैं, शौचालय जाते हैं तो हमारे बाकी सारे अंगों को साफ करते हैं, बाकी हमारे पूरी त्वचा को साफ करते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ एक घंटों के बाद गंदगी वापस शुरू हो जाती है इस शरीर से निकलना, है ना? तो ये कहां से गंदगी आ रही है, इतना इतने बचपन से लेके अब तक इतना साफ कर दिया शरीर को, कितना साबुन लगा लिया होगा, कितना घिसा होगा इस शरीर को, फिर भी आए दिन नहीं हर, और कई बार तो हम चाहे कितना भी मंजन कर लें, वो जो कई लोगों के अंदर की बदबू होती है, बैड ब्रेथ जिसे कहते हैं, वो फिर भी वैसे की वैसे बरकरार रहती, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है, तो बाहर से हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, हाँ कुछ हद तक ये शरीर थोड़ा बहुत साफ रहता है, लेकिन फिर क्योंकि अंदर से, और फिर हमने साफ तो कर लिया, लेकिन साफ करते ही जैसे बाहर कोई जाता है तो इतनी धूल मिट्टी गंदगी, एक वो कारण है और एक अंदर की गंदगी। चाहे आप कहीं पर भी रह रहे हो, कोई व्यक्ति चाहे बहुत ही खुले आसमान के नीचे शुद्ध हवा ऐसी जगह पर भी रह रहा हो, कोई शहर में नहीं रह रहा हो, फिर भी गंदगी अंदर से आती रहती। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर कितने जन्मों से ये रजोगुण और तमोगुण कूट कूट के हमने ही भर रखा, तो एक तो वो बाहर निकलता रहता है, आज उसकी चर्चा करेंगे हम, स्मृति, ये क्या है स्मृति हमारे अंदर, मेमोरी, और एक है बाहर से, जैसे मान लीजिए कि आपका घर रोड फ्रंट है, हाईवे, तो रोज झाड़ू लगा रहे हैं आप, और कुछ घंटों बाद वापस देखते हैं कि धूल जम गई, कई बार तो दिन में दो बार झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है ना, ऐसे घरों में जो रोड फ्रंट होते हैं दिन में दो बार झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि रोड फ्रंट है, इतनी सारी गाड़ियां आ रही जा रही हैं, धूल उड़ा रही हैं, पॉल्यूशन, उसके वो बार बार अंदर आता रहता है, अंदर आता रहता है, तो कलयुग क्या है? हम लोग हाईवे पर हैं, सबसे बिजी हाईवे कलयुग ही है। और यहां पर कौन सी गाड़ियां जा रही हैं कलयुग में, इस हाईवे पर जहां पर हमने अपना घर बसा रखा है? ये कई बार आप देखो, कई होते ना ऐसे रिक्शा या पुरानी ट्रकें जो जिनका साइलेंसर कभी साफ नहीं किया है, जिनके वो अंदर से ऐसा काला धुआं निकलता है इतना, हा? क्या उसका पीयूसी नहीं हुआ है? तो वैसी गाड़ियां हैं कलयुग की। ठीक है, अगर कोई वो पाश्चात्य देश की गाड़ियां होती जो बहुत कम ये प्रदूषण देती हैं, वैसा भी नहीं, इतना प्रदूषण उसमें से निकल रहा है। और फिर रोड फ्रंट हम लोग बसे हुए हैं कलयुग में। किसके रोड फ्रंट? माया के रोड फ्रंट। तो जितनी भी ये माया की गाड़ियां आ रही जा रही आ रही जा रही, उसके वजह से धूल मिट्टी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हर समय झाड़ू हाथ में रखो। कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हर समय झाड़ू हाथ में रखनी है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा आप साफ किए वापस तो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अब दुर्भाग्य, हमारा सौभाग्य है कि कम से कम हमारे हाथ में प्रभुपाद ने झाड़ू तो थमा दी। हाँ, वो अलग बात है कि हम बहुत बार उसको यूज नहीं करते इतना, है ना, लेकिन झाड़ू तो थमा दी हमारे हाथ। कलयुग के बद्धजीव इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि माया ने झाड़ू के रूप में उनके हाथ में एक ऐसी वस्तु थमाई है कि जिसके वजह से वो बटन दबाओ और प्रदूषण अंदर आ रहा है। होता ना वो वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर जानते हैं? तो वैक्यूम क्लीनर करता क्या है कि कोई कारपेट में आप उसको लगाओ तो कारपेट का जितना गंदगी धूल है वो अंदर कलेक्ट करता रहता है, वो सक करता है, खींचता है, वो चूसता है। तो एक है वैक्यूम क्लीनर और एक है ब्लोअर। ब्लोअर क्या करता है? फेंकता है। तो हमको प्रभुपाद ने वो ब्लोअर दिया है, जैसे ही कोई गंदगी आए हरे कृष्ण उसको ब्लो करते रहो, हरे कृष्ण ऐसे ऐसे ब्लो करते रहो। और यहां दुर्भाग्यवश कलयुग में क्या देखा जाता है वो कि वो वैक्यूम क्लीनर लेके बाहर रोड की जितनी गंदगी ले उसको और अंदर डालो, ये वाला चैनल भी लगाओ टीवी में, वो भी लगाओ, ये भी अभी टाटा स्काई अभी 500 चैनल अभी 600 और भी लगाओ। तो उनके हाथ में ना वो जो क्या बोलते रिमोट, वो करता क्या है, वो उस वैक्यूम का काम कर रहा है, जितनी सारी गंदगी सब मेरे घर में आ जाओ। और उसे चाओ से हम एकदम, ऐसा नहीं कि गंदगी आई तो कम से कम महसूस तो किया कि गंदगी आई, नहीं नहीं उसको सजाओ गंदगी को अच्छी से, और बड़ा बड़ा बना रहे हैं आजकल। तो जब भगवान ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा बैरी है, विद्य नाम यह बैरिणाम महाशनो महापापमा, यहां से शुरुआत होती है महापाप, जब व्यक्ति जिसमें लगना प्रारंभ कर देता है इस रजोगुण और इस तमोगुण के वजह से। और काम, और भगवान ने तुरंत कह दिया क्रोध, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस काम वासना को व्यक्ति कभी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काम वासना कभी पूरी होगी नहीं, कभी संतुष्ट नहीं होने वाली है। इसलिए भगवान ने पहले से ही बता दिया कि उसके बाद है क्रोध, और क्रोध के बाद जो हमने पिछले हफ्ते लिया सम्मोह। तो जस्ट एक रिकैप हम लेंगे, पिछले हफ्ते हमने इस पर डिस्कस किया था कि सम्मोह इल्यूजन कौन से नीति शास्त्र के अनुसार, कौन से ये चार कलयुग के क्लासिक स्टैंडर्ड ब्रांडेड इल्यूजन्स, सब ब्रांडेड है, कलयुग का ब्रांड है. मनी विल गिव मी ऑल हैप्पीनेस. और हमने कार्ल मार्क्स का उदाहरण लिया था, याद है, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल सॉल्व ऑल ऑफ माय प्रॉब्लम्स, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. और हाँ, हमारे अभी देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे कुछ तकलीफों को ये दूर किए हैं, हाँ, कुछ तकलीफों को दूर किए हैं, कुछ नहीं, बहुत सी तकलीफों को दूर किए हैं. लेकिन होता क्या है कि उसके साथ साथ यदि हमारी दो तकलीफें हैं, तो हमारी दो तकलीफों को दूर तो साइंस करता है, हम इसको नहीं नाकारते, लेकिन उसके साथ 20 और अलग तकलीफें फ्री में देता है ना. जैसे कि मान लीजिए सेलफोन, तो हाँ, हमारी कौन कौन सी तकलीफें ये सेलफोन ने सॉल्व की है. एक व्यक्ति कह रहा था कि सेलफोन ने ऐसी तकलीफ सॉल्व की है कि अगर मैं टॉयलेट में हूं और लैंडलाइन पे फोन आए, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ता था, बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था. लेकिन थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि अभी मैं सुकून से बात भी कर सकता हूं. तो हाँ, हम जानते हैं, ठीक है. लेकिन उसके साथ फिर वो बाद में कहते हैं कि ये वाले कान पे मत लगाना, है ना, साइंस ही बोलता है. ये सुना आपने, सेलफोन ये कान से, राइट ईयर से मत सुनो. फिर वो लोग भेजते हैं कि यहां पे कान पे आप लगाओगे तो उसमें वो रेडिएशन जाएगा इतना अंदर, फिर आप यहां पर आपके दिमाग की भुर्जी बनेगी, हाँ, दिमाग की भुर्जी बन जाएगी पूरी, खाने लायक भी नहीं रहेगी. फिर वो कहते हैं कि यहां पर वो सेलफोन को लगाओ, वो भी दूर लगाओ. फिर आजकल अलग अलग, वो हैंड्स भी तो इतना दूर रहेगा, फिर स्पीकर थोड़ा और दूर, अरे तो लैंडलाइन यूज कर लो. तो उसके साथ साथ फिर वो ब्रेन ट्यूमर, ये कैंसर, वो, और कई बाहर के देशों में तो उन्होंने इतने परेशान हो गए हैं कि फिर वो कई रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस में उन्होंने लिख रखा, सेलफोन्स नॉट अलाउड, या पेट्रोल पंप में भी लिखते हैं कि उसको बंद करके रखो. तो हाँ, कुछ तकलीफें ये एक उपकरण ने हमारी सॉल्व की होगी, लेकिन उसके साथ साथ कितनी और अन्य तकलीफें दी हैं. तो फिर होता क्या है, सम्मोह किसे कहते हैं, ये जो दूसरा क्लासिक इल्यूजन, सम्मोह किसे कहते हैं, कि जो दो तकलीफें हमारी दूर हुई हैं, हम केवल उसी में मोहग्रस्त हो जाते हैं, और उसके साथ जो 20 नई तकलीफें आई हैं, हमको ऐसे इल्यूजन में रखते हैं कि उसको भी हम लगे हुए हैं सॉल्व करने के लिए. आप रुको, इसको यूज करते रहो तब तक आप मर जाओगे, लेकिन आपके बेटे जो हैं वो ऐसा सेलफोन यूज करेंगे जिसमें तकलीफ नहीं होगी. तो जब तक आप हो मरो, अगले व्यक्ति को हम, इसलिए प्रभुपाद कहा करते पोस्ट डेटेड चेक, कि वो जो प्रोमिसेस है वो पोस्ट डेटेड चेक का है. फिर देयर इज ओनली दिस वन लाइफ, चार्वाक मुनि उन्होंने कह दिया कि बस, हाँ, अब मरना तो है ही, ये न के न प्रकार न मरना तो है ही. जैसे मेरा एक मित्र, वो हाल ही में मुझसे बात कर रहा था, तो उस जमाने में भी और अब तो और भी बहुत दारू पीता है. तो उसने मुझे पूछा, तू तो नहीं पीता होगा, उस समय भी नहीं पीता था, अब क्या पिएगा. मैंने कहा, नहीं, मैं दवा पीता हूं, होता ना दवा दारू, तू दारू पीता, मैं दवा पीता हूं. तो वो उसका लॉजिक देखिए, वो कहता है कि अच्छा फिर तुम लोग कहते हो कि दारू पीने से व्यक्ति जल्दी मरेगा, तो तू क्या दूध पीता है? मैंने कहा तो दूध पीने से अमर हो जाएगा तू? हां दूध पीने से अमर नहीं होने वाले, तो इसका मतलब ये नहीं कि दारू पियो। आप लोगों को लॉजिक अच्छा लग रहा होगा, कैसे इसको आंसर कैसे किया? तो मैंने कहा हां कि दूध पीने से कोई अमर नहीं होता, तो फिर यदि यही लॉजिक मैं यूज करूं कि मैं फिर दूध क्यों पीऊं, तो इससे अच्छा मैं ऐसी चीज पीऊं कि जो मुझे जल्दी मारे, क्योंकि दारू तो जल्दी मारेगी ना मुझे। ठीक है, दूध मुझे उतनी जल्दी नहीं मारेगा जितनी दारू जल्दी मारेगी, अमर भी नहीं करेगा। दारू तो अमर नहीं करने वाला, लेकिन दूध भी अमर नहीं करने वाला, और दारू दूध से पहले मुझे मारेगा, ये बात सत्य है, मानता है ना? हाँ मानता है। तो फिर दारू ही क्यों, जहर पीना शुरू करना और भी जल्दी मरेगा, उसमें क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है कि मैं उसमें भी वो लोग नहीं, मेरे को तो वोडका विस्की रम ये पीना है। क्यों सीधा वो पोटेशियम साइनाइड भर भर के पियो ऑन द रॉक्स एंड देन इन द ग्रेवयार्ड, ऑन द रॉक्स इन द ग्रेवयार्ड। तो लॉजिक ये है कि भाई जब तक जीना है भाई ऐश करके जियो, क्यों इतनी तकलीफ अपने आप को दे रहे हो? फिर दैट इज स्टिल फार फार अवे। यहां एक तरफ तो ये भी वो जानते हैं कि मृत्यु आने वाली है, चाहे वो नास्तिक हो आस्तिक हो साइंटिस्ट हो अनपढ़ गवार हो, मृत्यु अटल, ये अटल सत्य है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को जब पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा अचंबा क्या है, आश्चर्य क्या है, तो यही उन्होंने कहा कि रोज लोग मर रहे हैं, हम देख रहे हैं सुन रहे हैं और अपने अंदर भी महसूस कर रहे हैं, कितनी बार नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि मरते मरते बचे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं नहीं अभी तो मेरे पंडित जी ने मुझे अभी नहीं बोला है, मेरी तो, देखो यहाँ पर हस्तरेखा भी मेरी बता रही है कि कितना कितनी गहरी है, कितनी लंबी तक जा रही है अभी तक, और फिर इतना मैंने जो प्लान कर रखा है, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, और उसके पश्चात जो मेरा शरीर मुझे अभी इतना साथ दे रहा है मेरा, तो नहीं मेरे साथ नहीं हो पाएगा। तो ये है चार नीति शास्त्र के अनुसार क्लासिक इल्यूजन। इसलिए वो श्लोक याद है कि जो गिद्ध है वो गिद्ध 800 मील ऊपर से देख पाता है कहां एक मरा हुआ शव गिरा है, 800 मील ऊपर से, लेकिन वही गिद्ध के सामने जब मृत्यु आती है, सएव प्राप्ता कालस्तु पाश बंधम न पश्यति, अपने निकट की मृत्यु को नहीं देख पाता वो, इतना शार्प विजन उसका है, बट कैन नॉट सी डेथ इन फ्रंट। तो इसके पश्चात अब आज के श्लोक में भगवान आगे बता रहे हैं कि क्रोध से सम्मोह, अब उस सम्मोह से स्मृति के नाश हो जाता है, स्मृति भ्रमशात, भ्रमित हो जाती है व्यक्ति की स्मृति। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने भगवद गीता एज इट इज में इसका अनुवाद किया है, स्मृति भ्रमशात का अनुवाद किया है मेमोरी लॉस। अब देखिए ये एक साइंटिफिक टर्म भी है मेमोरी लॉस, और बहुत बार हम देखते हैं कि किसी हादसे के वजह से व्यक्ति की याददाश्त वो खो जाता है उसकी, है ना, मेमोरी लॉस। एक डिजीज है अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज ऐसा है कि व्यक्ति धीरे धीरे वो भूलना शुरू करता है, और डॉक्टर ने मरीज को कहा कि आपको एग्जामिन करने के बाद एक अच्छी खबर है बुरी खबर है, तो उसने कहा पहले बताओ कि बुरी खबर क्या है, अच्छी खबर बाद में बताओ। उसने कहा बुरी खबर यह है कि आपको एड्स हुआ है, मतलब फेटल, मरने वाले हैं। तो इसमें बाकी क्या रह गया, अच्छी खबर क्या है? बोला अच्छी खबर यह है कि एड्स के साथ अल्जाइमर्स भी हुआ है आपको, तो मतलब ये कि भूल जाओगे कि आपको एड्स हुआ है। तो अल्जाइमर्स में धीरे धीरे उसका मेमोरी लॉस, भूलता रहता है। तो जैसे कई बार प्रवचन में भी आते हैं ना हम लोग, तो एक व्यक्ति हमें बोल रहे थे, प्रभु जी आपका प्रवचन हर बार मुझे नए लगता है। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि शायद हो सकता है कि कुछ नया सुनाता हूं, और दूसरा कारण तो मेमोरी लॉस। अब यदि हम कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, या हम हमारे मन को यदि लें, तो ये मेमोरी या स्मृति शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहां पर ये बच्चा अग्नि को स्पर्श करने जा रहा है, तो अब हम लोग हमारे जीवन में अग्नि को, जब ऐसे अगर कोई इच्छा भी होती है कि अग्नि को हम स्पर्श करें, तो क्यों हम अपने आप को अग्नि से स्पर्श करने से रोक लेते हैं? क्यों रोक लेते हैं? क्या क्या हमारे अंदर ये कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके वजह से हम जैसी अग्नि आई पास में, या हम पास में अग्नि के गए, तो तुरंत हम अपना हाथ पीछे कर ले, पीछे करते हैं ना? प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस देता क्या है हमें? मेमोरी है ना, मेमोरी देता है। जैसे प्रभुपाद वह उदाहरण दिया करते थे कि बच्चा आग्रह कर रहा है, पिताजी को बोल रहा है मुझे आग को छूना है, आग को छूना है। जैसे यहां पर तो पिताजी बोलते नहीं, आग जलाती है, नहीं मुझे लेकिन छूना है। तो पिताजी लेता है, थोड़ा सा चटका दिलाता है उसको, फिर बाद में जैसे उसको चटका लगता है बच्चे को, फिर पिताजी पूछता है छूना है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद क्या हर बार पिताजी को बोलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो वो बच्चे को अग्नि से कौन बचा रहा है? क्या कहोगे? स्मृति। उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी उसे अब अग्नि से बचा रही है। तो ये एक उदाहरण हमने लिया। ऐसे कितनी सारी चीजें, अब शक्ति, ये जो स्मरण शक्ति हमारे अंदर, ये ऐसी शक्ति है कि यदि इसका सदुपयोग हम करें तो ये हमें भवबंधन से बाहर निकाल सकते हैं। और यही स्मरण शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो होता क्या है? अब यहां पर जो भगवान बोल रहे हैं कि सम्मोह के कारण स्मृति का नाश, तो सम्मोह के कारण स्मृति, कौन सी स्मृति का नाश? वो स्मृति का नाश जो आप सदुपयोग कर सकते हो, ऐसी स्मृति का नाश, तब तो जाके प्रणश्यति हो रहा है। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे कि स्मरण शक्ति का रोल क्या है। अगर हम रोल ऑफ मेमोरी देखें, तो साधारण से हमारे रोजमर्रा के जीवन की प्रक्रिया, स्पीकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, बेसिक रिफ्लेक्सेस और सटल इंप्रेशंस। अब जैसे हम रोज बात करते हैं, तो हमने ये बात करना सीखा ना बचपन में। छोटा बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, सबसे पहले जब वो कुछ बोलता है, हाँ, जैसे मम्मा पापा जो भी कुछ बोलता है, आ भी कर दिया तो सब लोग अरे बोलना शुरू किया। अब देखिए, बच्चा बचपन में अगर वो जो भी तोतली भाषा में पहला शब्द भी निकालता है तो लोग माता पिता कितने खुश होते हैं, अरे बोला, पहली बार बोला। अब मान लीजिए कि वो 25-30 साल का हो गया, बड़ा हो गया, हाँ, और अचानक बोल ना उसकी शादी हो रही है, उस समय बोल दिया आई ऐसे करके जो भी मामा, तो सब लोग क्या बहुत खुश, अरे बोला मामा बोला ऐसे। खैर उसके बाद मम्मी की बहुत याद भी आती। तो उस समय वो कुछ भी तोतली भाषा में भी कुछ बोलता है तो कोई उसको सराहेगा नहीं, उल्टा यदि वो तोतली भाषा में बोल रहा है तो लोग कहेंगे इतना बड़ा हो गया अभी तक तोतली भाषा बोलता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है उससे, उसे अपेक्षा क्या है कि इतने साल का ये हो गया तो इसे भाषा तो आनी चाहिए। अभी लोग तो कितनी भाषाएं बोल लेते हैं, जो होते हैं ना ये मल्टीलिंग्विस्ट, कितनी कितनी भाषाएं बोल रहे, कम से कम हम लोग भी मल्टीलिंग्विस्ट इतने तो नहीं होंगे, अंग्रेजी हिंदी जो भी स्कूल में जो पढ़े हैं, मराठी कुछ यहाँ वहाँ की भाषा तो सीख लेते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर भी सीख लेते हैं। अभी कितने यहाँ महाराष्ट्र में बाहर से आए हुए हैं, हाँ, जो यहाँ के नहीं हैं, तो कई आप देखो साउथ इंडिया में भी मैंने देखा कि वहाँ पर फ्लुएंट वो साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, सरदार साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। और मैं हम लोग गए थे इधर राजस्थान में, पुष्कर में गए थे, तो पुष्कर जहाँ पर मंदिर है ब्रह्मा जी का, तो वहाँ पर एक श्री वैष्णव मठ, तो वहाँ पर साउथ इंडियन एकदम बहुत रिमोट तमिलनाडु के, और वहाँ पर एकदम फ्लुएंट मारवाड़ी बोल रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में एक गृहस्थ हैं तो वो जर्मनी के हैं, उनकी धर्मपत्नी महाराष्ट्रियन है, तो उनका जो लड़का है वो एकदम जर्मन दिखता है, ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लू आईज, एकदम गोरा चिट्टा। तो उसको जब मैंने देखा, वो एक बार आया था हमारे मंदिर में, तो उसको मैंने देखा एकदम फॉरेनर के बच्चे होते ना वैसे, वैसा दिखता है वो। लेकिन वो जैसे बोलना शुरू किया, आई माला पाइजे, मैंने तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये इसके अंदर दूसरा कुछ चिप डाल दिया अंदर, मतलब टेप रिकॉर्डर जापान का लग रहा है लेकिन कैसेट गांव खेड़ा की है। तो अब देखिए, हम लोग जो भी भाषा बचपन से अब तक सीखे हैं, कल्पना कीजिए कि ये सारी जो चीजें यहां पर आप देख रहे हो, चलना कैसे चलना चाहिए, छोटा बच्चा कितना मुश्किल होता है उसके लिए, दो कदम भी लेना उसको सिखाया जाता पकड़कर, कैसे चलते हैं कि अभी ये पैर आगे रखो, फिर दूसरा पैर आगे रखो, फिर ऐसे। तो मान लो कि रोज हम सुबह भूल जाएं, कितना भयानक ये विचार होगा, रोज सुबह भूल जाएं कैसे बोलना है, कौन सी भाषा बोलनी है, कैसे रोज सुबह कैसे चलना है भूल जाएं। अब तक तो ठीक था, सोचिए रोज सुबह भूल जाएं खाना कैसे, रोज सीखना है उसको। ऐसा ऐसी अगर कोई किसी खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति आ जाए कि रोज उसे सीखना पड़ रहा है सब, कितना भयावह जीवन हो जाएगा उसका। तो ये हम इतनी आसानी से इतना बोल पाते हैं, सारी दुनिया में लोग कितना कुछ नहीं बड़बड़ कर रहे, क्यों? अब जैसे हम लोग प्रवचन देते हैं जो प्रचारक हैं इस्कॉन के, तो ऐसा नहीं कि हम एक एक लाइन उसको रट्टा मार के आते हैं कि अभी इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, नहीं। अब जो मन में सोच रहे हैं उसके साथ साथ बोलना भी है। मतलब सोचिए, मेमोरी, एक जो प्रचारक होता है उसकी मेमोरी कितनी शार्प होनी चाहिए कि अगला शब्द क्या है वो उसके अंदर के हार्ड डिस्क की डिक्शनरी से निकाल कर, अभी जो मैं बोल रहा हूं सब निकाल निकाल के बोल रहा हूं, तो साथ साथ सोचना भी बोलना भी ये सब कुछ एक साथ करते रहना। तो हालांकि ये साधारण चीजें हमको लग रही होंगी, स्पीकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, खाना, अब छोटा सा बच्चा कैसे उसे पता लगता है कि जो भी वस्तु है यहां मुंह में डालनी है? हाँ, ये चेहरे पे और भी बहुत से छेद हैं, इधर भी छेद है, इधर भी छेद है, क्यों ये छेद में डालता है वो खाना? मेमोरी, क्योंकि सब उसके मेमोरी में स्टोर्ड है कि कहां क्या भोजन है कैसे। और जो पशु हैं, हम मनुष्यों के तो बहुत कम मेमोरी होता है, उल्टा हम लोग तो ज्यादा भुलक्कड़ हैं, जो हम मनुष्य, पशु जो हैं। अब देखिए, मुझे हाल ही में एक वीडियो भेजा गया था कि ये हाथी, हाथी की डिलीवरी। अब सोचिए, हाथी, छोटा सा हाथी भी कितना बड़ा होता है हमारी तुलना, हमारे छोटे बच्चों की तुलना में, इतना इतना बड़ा, तो उसका ही वजन कुछ 100-150-200 किलो हो जाएगा, छोटे से बेबी एलिफेंट पैदा हुआ है और 5 मिनट नहीं हुए उसको पैदा हुए चलना शुरू। सोचिए, मनुष्य का बच्चा 1 महीना 2 महीना 3 महीना 11 महीना, फिर उसको धीरे धीरे वो वॉकर और ये वो सब पे लगाना पड़ता है, ये 5 मिनट पैदा नहीं हुआ चलना शुरू। और कई तो ऐसे ऐसे हैं, जैसे ये छिपकली इत्यादि ऐसे कुछ रेप्टाइल्स हैं जो पैदा होते ही खाना शुरू, और वो भी ऐसा नहीं कि अब वो छिपकली जो है, अब कई बार ये देखा गया है कि छिपकली पैदा हुई है और पैदा होते ही बगल में कोई कीड़ा है उसको खाना शुरू, ऐसा नहीं कि उसकी जो माँ है वो उसके लिए अरे नहीं 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 तेरे को मैं सेरेलैक खिलाऊंगी अभी, ये बड़े होने के बाद खाना चाहिए, ये ना बड़े लोग खाते हैं, ये कीड़ों को बड़े लोग खाते हैं, अभी सेरेलैक कौन उनको ये सब खिला, हम लोग इतना पहले बेबी फूड, ये वो दाल चावल पीस पूस के उसका पानी, फिर थोड़ा बड़ा होता है पेट खराब ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, कितना हमको ख्याल रखना। लेकिन ये लोग देखिए, जो पशु हैं इनके अंदर ये जो स्वाभाविक तरीके से, क्योंकि इनके अंदर ये बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि, इसलिए हमने सुपरमार्केट ने सब कुछ भर रखा है सेरेलैक फेरेक्स ये वो, इनके अंदर बुद्धि नहीं है तो 5 मिनट में खड़े होकर चलना भी शुरू ये लोग। तो एक दृष्टिकोण से इनके अंदर जो फिजिकल टेक्नोलॉजी फिट हुई है वो हमसे ज्यादा सशक्त है, हमारे अंदर ये बहुत सशक्त है, ये उनके अंदर नहीं है। तो बेसिक रिफ्लेक्सेस, जैसे खांसना, छींकना, खुजलाना, ये सब बेसिक रिफ्लेक्सेस, ये हमारे अंदर अंदर सबकॉन्शियस में फिट होता है, और कई बार बिना देखे, बिना उसके ऊपर गौर किए हम इस रिफ्लेक्सेस को करते रहते हैं। और फिर शास्त्र बताते हैं सटल इंप्रेशन, सूक्ष्म हमारी इच्छाएं, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अब जैसे छोटा सा बालक है, वो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी एक स्वाभाविक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती, वो हमें लगता है कि वो स्वाभाविक है कि हाँ चलो उसको मीठा पसंद है या ना पसंद है, तो वो उसके अंदर पहले का कुछ इंप्रेशन है जिसके वजह से अभी वो सटल इंप्रेशंस ऊपर उठ के सरफेस हो रहे हैं। और ये सब कुछ हमारे अंदर ये बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, बेसिक रिफ्लेक्सेस, ये सब कुछ हमारे अंदर, ये जो मेमोरी है, मेमोरी का, मेमोरी कार्ड बोलते हैं ना उसके अंदर, किसमें, सेलफोन के अंदर मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड जो हमारा, उसका कैपेसिटी बहुत है, वो टेराबाइट्स उसके ऊपर गया है बहुत, वो ऐसा मेमोरी कार्ड है हमारे अंदर कि कितने जन्मों जन्मों से, जैसे श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में जब कपिल मुनि शिशु के विषय में चर्चा करते हैं कि कैसे गर्भ अवस्था से शिशु बाहर निकलता है, उसकी क्या अवस्था होती, तो एक छोटा सा बालक, उसमें बताया गया है कि छोटा सा बालक कम से कम उसकी शुरुआत होती है पिछले 100 जन्मों की मेमोरी से. द लिटिल एम्ब्रियो बिगिन्स इट्स जर्नी इन दिस लाइफ, वट एवर लाइफ दैट इज, विद द मेमोरी ऑफ 100 lifetimes बिफोर, वेरी यू नो कॉन्सेंट्रेटेड मेमोरी एंड मिक्सड अप मेमोरी ऑफ 100 lifetimes. इसलिए कभी आपने गौर किया है, बच्चे, छोटे से बच्चे, एकदम नवजात शिशु जो होते हैं, वो अचानक कभी मुस्कुराएंगे, हा? कोई किसी ने कुछ उनको गुदगुली नहीं की, जो जोक नहीं सुना है, कुछ नहीं, अचानक मुस्कुराएंगे, अचानक ऐसे कुछ आवाज निकालेंगे. तो कपिल मुनि कहते हैं कि ये सब क्यों होता है, क्योंकि अचानक उसके मेमोरी में कोई ऐसी बात याद आई उसको. मान लो कि 91 जन्म पहले किसी ने उसको कोई गुदगुली की, तो अचानक उसको याद आ देता है. तो अभी जैसे आप हंसे, तो हो सकता है कि 91 जन्म बाद आप जब इतने से होंगे कभी, तो आप वो पालने में अचानक हंसेंगे. तो क्या सोच के हंसेंगे, हाँ वो जो 30 नवंबर को 2011 में वेडनेसडे क्लास में वो एक जोक मारा था, याद आया. तो आपके माता पिता भ्रमित हो जाएंगे कि हंस क्यों रहा, उनको लगा बच्चा हंस रहा है, वो भी हंसना शुरू करते. फिर वो मेमोरी उसके अंदर फिट हो जाता है, वो बच्चे को देख के हंसे, तो उनके भी 51 जन्म के बाद. तो कपिल मुनि कहते हैं कि ये सारे, फिर अचानक वो रोने लगता है बिना कारण के, तो वो भी उसको कुछ ऐसी दुखद घटना याद आ गई होगी किसी जन्म की, तो उसकी शुरुआत उससे होती है. जैसे जैसे फिर उसकी थोड़ी सी बुद्धि विकसित होती है, तो और ये सब इंप्रेशन स्ट्रांग होते जाते हैं उसके मेमोरी के. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हम हमारे मेमोरी कार्ड में क्या स्टोर कर रहे हैं. हमको लग रहा होगा कि अरे पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं, कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड के मेमोरी कार्ड में स्टोरेज होता रहता है. कैसे, थोड़ा टेक्निकली हम समझेंगे. तो साइंस के अनुसार भी जो हमारा मस्तिष्क है, बुद्धि, ब्रेन का डिवीजन हुआ है लेफ्ट और राइट ब्रेन से, तो जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा, वो सब लॉजिकल, सिक्वेंशियल, रेशनल, मतलब एकदम क्या कहते हैं, कैलकुलेटिव, हर प्रकार से नापतोल करके, जो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो हर समय नापतोल, फायदा नुकसान, ये सारी चीजें, मतलब जो ज्यादा उसमें सोचता है, ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है, ज्यादा लॉजिकल, और ये जो लिखा हुआ है सिक्वेंशियल, रेशनल, वो सब उसका लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग रहता है. और जिसका राइट साइड का ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग है, उसके अंदर ये सब कुछ कलाएं होती हैं, फाइन आर्ट्स, ये सब कलाएं जो होती हैं, इमोशंस, इमोशनल साइड उसका ज्यादा स्ट्रांग रहता है, जिसका जो थोड़ा ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, मतलब उनका वो राइट साइड का काफी स्ट्रांग है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर कुछ इंट्यूशंस ज्यादा आते हैं. तो ये तो एक बायोलॉजिकल, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया. जैसे ये एक्सरसाइज हमने पहले भी किया था, लेकिन अभी क्योंकि लेफ्ट राइट साइड ब्रेन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम फिर से इसे लेंगे. जैसे यहां पर यदि मैं आपसे कहूं कि ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम फॉलो यदि करें, लुक एट द चार्ट एंड से द कलर ऑफ द वर्ड, नॉट द वर्ड. Say the what? Color of the world. ट्राई कीजिए आप,
क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं, अब येलो वर्ड को देख रहे हैं लेकिन वो कौन से कलर में लिखा हुआ है वो हमको उच्चारण करना है।
मेरे ख्याल से आप पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं अभी तक। ये इसलिए कि अब जैसे जैसे हमारे इस्कॉन में हमारे भक्त मृदंग बजाते हैं, है ना, तो जो नए होते हैं वो जब देखते हैं हमारे एकदम माने हुए खिलाड़ी, मृदंग खिलाड़ी जो यहाँ पे हैं सब, वो लोग जब बजाना शुरू करते हैं तो लोग उनको देखते रहते हैं कि ये एक हाथ इधर अलग जा रहा है, ये इधर अलग जा रहा है, ऐसे ऐसे देखते। तो नए लोग जब मृदंग बजाना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि ये राइट लेफ्ट ब्रेन का कन्फ्यूजन जैसे यहाँ पे हो रहा है ना वो हो जाता है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ लोग कई बार आते हैं मेरे पास भी मृदंग लेके आते हैं कि गुरुजी तो कैसे होता है ये यहाँ पर ये कैसे करते हैं, ये इतना बड़ा यहाँ पर इधर अलग से करते हैं। तो उनको थोड़ा भी सिखाना कि कोशिश करते हैं तो शुरुआत में क्या देखा जाता है कि जब इधर फोकस करते तो इधर चुप हो जाते थे, कुछ नहीं, इधर से कुछ आवाज है, मैंने यार दोनों साइड से आवाज आनी चाहिए, अच्छा दोनों साइड से, फिर इधर से शुरू करते तो इधर बंद हो जाए। यदि आप प्रयास करो मृदंग सीखने का, या किसी ने भी किया होगा तो, जैसे हमें पता है हमें बचपन में वो खेल होता था ना, वो ये ऐसे करो हाँ और फिर ये ऐसे करते रहो, आप ट्राई करोगे, ये लेफ्ट साइड राइट साइड इतना कंफ्यूज कर देगा आपको। बचपन में हम लोग बहुत ये शर्त लगाते थे कि ये जो दो हाथ है, अलग अलग दोनों हाथ है, लेकिन दोनों हाथ की क्रियाएं अलग अलग कैसे की जाए, ये राइट लेफ्ट साइड ब्रेन के बीच में समझौता होना चाहिए, उनमें क्लैशेस हो जाएगा। तो अक्सर करते क्या है, ओके यश ट्राई कम हियर, सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टैंड हियर, व्हाट यू हैव टू डू with your left, sorry, with your left hand you have to rub on your head while beating on your stomach. Yeah, he's able to do that. But generally क्या होता है कि शुरुआत में थोड़ा बौखला रहे थे, मुझे पता है आप लोग try करने वाले हैं घर पे। तो जनरली ये सारी चीजें हमको ये करने के लिए एक था कि ये हाथ ऐसे घुमाया जाए क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज, ये सबसे मुश्किल हुआ था क्योंकि दोनों हमारे लेफ्ट राइट साइड ब्रेन उसमें कंफ्यूज करते थे। तो यहां पर इसकी इस चर्चा की शुरुआत हमने इसलिए की है कि जो हमारा मन है, ये मन का विभाजन इस तरीके से हुआ है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, कि अभी तुरंत जो हम नया विचार सोचते हैं वो हो गया हमारा मान लीजिए कि कॉन्शियस माइंड, और कई ऐसे विचार हैं जो कि हमारे अभी के नए विचार को सोचने में प्रेरित कर रहे हैं या बिना सोचे भी वो विचार आ रहे हैं। जैसे अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुष, तो वो हमारे पिछले जो सबकॉन्शियस माइंड में हमने सब स्टोरेज करके रखा है, जैसे कि गोदाम, एक है कि गोदाम के अंदर माल है और एक है बाहर विंडो पर दुकान में, तो गोदाम में जो माल है उसी का एक सैंपल बाहर है ना। तो उसी प्रकार से हमारे कॉन्शियस माइंड में अभी जो विचार हैं फिलहाल एकदम फ्रेश प्रेजेंट विचार, हमको लग रहा होगा एकदम फ्रेश प्रेजेंट विचार हैं, लेकिन ये सब अंदर के सबकॉन्शियस माइंड के गोदाम से निकाल निकाल कर हम आगे उसको प्रस्तुत करते रहते। तो ये एक उदाहरण दिया है आपको, यदि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये है एक आइसबर्ग। आइसबर्ग ये ऐसे ऐसे जो प्रांत है जहां पर बहुत सर्दी पड़ती है, जहां पर बर्फ जमती है समुद्र में भी, जैसे टाइटैनिक जहाज वो एक आइसबर्ग से टकराया था। और वो कितना बड़ा, इतना बड़ा आइसबर्ग था, नीचे देखिए उसको, नीचे कितना बड़ा दिख रहा है वो, लेकिन ऊपर उतना सा ही दिख रहा है, छोटा सा, ऐसे लग रहा है कि बस एक कोई छोटा सा द्वीप होगा, लेकिन कई इतने बड़े बड़े होते हैं, ये पर्वत से भी ऊंचे उनके नीचे। तो यदि हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लें तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इतना सा वो आइसबर्ग, बर्फ का वो ढेला, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है 10%। और उसके नीचे जो इतना बड़ा वो पानी के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसने ऊपर जहाज को डुबा दिया था इतने बड़े, वो 90% है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो इसलिए हमें इसमें तसल्ली नहीं रख लेनी चाहिए कि अभी तो मेरे मन में कोई भी प्रकार के ऐसे विचार नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या है कि दूर से खाली वो छोटा सा बर्फ, छोटी सी बर्फ दिख रही है, लेकिन फिर जैसे जैसे हम चैंटिंग शुरू करते हैं, एक माला, दो माला, एक महीना, दो महीना, एक साल बाद, फिर पता लगता है वो चैंटिंग हमें एक टूर कराता है। किसका टूर कराता है? नीचे ले जाके, नीचे ले जाए, देखो नीचे क्या है तुम्हारे, वो जो दिखाई नहीं दे रहा था वो चैंटिंग हमें करता। वो जैसे वो क्लासिक उदाहरण है, झाड़ू मारते हैं, कोई कमरे को 10 साल से साफ नहीं किया, झाड़ू मारना प्रारंभ करते हैं, तब समझ में आता है कि सारी धूल, क्या क्या धूल बाहर निकल रही है। तो ये प्रपोर्शन बताया गया है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का। यदि हम कुछ उदाहरण से समझें तो पहला उदाहरण हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का ये दिया गया, एक माली और एक बागीचा, गार्डनर एंड गार्डन। क्या समझे आप इस उदाहरण से? कौन एक्सप्लेन कर सकता है? गार्डनर टेक्स केयर ऑफ गार्डन। ये हम ऐसे समझेंगे कि आपने मान लो कि गार्डन में अलग अलग फूल देखे, चमेली का, गुलाब का, मोगरा, क्या हो, ये कितने सारे अपने फूल देखे गार्डन में। तो क्या वो जो भी फूल इतने अच्छे सिमेट्री में, इसके बगल में ये, उसके बगल में, वो अपने आप आ गए? नहीं ना। बागीचा दिख रहा है आपको लेकिन माली नहीं दिख रहा होगा, जिसने अलग अलग जगह पर वो बीज डाले, और केवल बीज नहीं, फिर खाद डाली, पानी डाला, सींचा, देखभाल किया, और अभी वो गार्डन दिख रहा है। तो गार्डन में कौन सा बीज क्या उगाएगा, कब उगाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? गार्डनर। तो वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो 90% हम स्टोरेज रखते हैं हमारी इच्छाओं का, अच्छे बुरे जो भी कुछ, उसका एंट्री कहां से है? कौन डिसाइड करता है कि वो सबकॉन्शियस गोदाम में कौन सा माल रहेगा? कॉन्शियस माइंड। समझ में आया? अच्छा, ये मॉडर्न उदाहरण है। अब सबकॉन्शियस माइंड वो डीवीडी प्लेयर की तरह है। अब उसमें आप चाहे रामायण महाभारत की डीवीडी चलाओ तो वो चलाएगा, चाहे उसमें आप सिनेमा की डीवीडी चलाओ। तो डीवीडी प्लेयर क्या है? जो डीवीडी आप अंदर डालोगे वो डीवीडी प्लेयर चलाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड वही है। तो हम सबकॉन्शियसली कई बार ये जो विचार हमें चैंटिंग के समय या जो भी सताते हैं, ये सब हमने पिछले कितने जन्मों से कितनी सारी डीवीडी, कोई होते ना मल्टी डिस्क होते हैं प्लेयर्स, तो वैसे हमने कितनी सारी डीवीडी हमारे सबकॉन्शियस डीवीडी प्लेयर में इंसर्ट करके रखी थी, फिर जब हम चैंटिंग के लिए बैठते हैं तो कभी एक डीवीडी बाहर आके चलने लग जाती, फिर अचानक हम महामंत्र जप कर रहे हैं तो कोई दूसरा ही गाना सुनाई दे रहा है अंदर, तो ये कहां से छू, मैंने तो लगाई नहीं थी डीवीडी, लगाई कैसे नहीं, इंसर्ट तो करके रखी थी आपने, हो सकता है 10 जन्म पहले। तो ऐसे कितने सारे जन्मों में हमने अलग अलग हमारे इंद्रिय भोग की डीवीडीज इंसर्ट कर करके सबकॉन्शियस माइंड में रखी और फिर वो बाहर, और कॉन्शियस माइंड जो है वो डिसाइड करता है कि ठीक है, फ्री विल जो हमें भगवान ने दिया उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये जन्म में कौन सा डीवीडी हमको इंसर्ट करके रखना है, ये हार्ड डिस्क में कौन सा फाइल हमको लोड करके रखना है। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के विषय में बताया गया। तो अब जब पास्ट लाइफ मेमोरीज, क्योंकि हम स्मृति की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे जीव हैं जो अपने पिछले जन्म को बहुत अच्छी से याद रख पाते हैं, हालांकि कुछ समय के लिए, जैसे गीता कोर्स में हम ये स्लाइड यूज करते हैं कि ये डॉक्टर ईएन स्टीवेंसन, अभी हमें हमें लग रहा होगा कि अरे भगवान ये तो क्या 5000 वर्ष पहले स्मृति के बारे में कुछ बोल रहे थे, ये यहाँ पे आजकल के वैज्ञानिक डॉक्टर ईएन स्टीवेंसन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि कैसे लोग अपना पिछला जन्म इतने विस्तार से याद रखते हैं, ऐसे ऐसे केसेस, ज्यादातर इंडिया के ही केसेस हैं वो। और ये मैडम, इनसे हम मिले थे बैंगलोर में, सतवंत पसरीचा, जो कि वहाँ निमहैम्स करके एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर ये एक प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री है। तो ये इंडिया में उन्होंने कितने ऐसे स्टडीज किए हैं जिसमें बच्चे 2-3 साल के, हमने गीता कोर्स में उदाहरण भी लिया था दीप कपाड़िया मुंबई का एक, जो कि उदयपुर में एक सिक्योरिटी ऑफिसर था और उसका कत्ल हुआ था, और वो अब सेंटा क्रूस में जो भी बंबई में 3 साल का, लेकिन सब कुछ उदयपुर के बारे में जानता है, लेके भी गया पूरी टीम को वहां पर लेके गया, सब कुछ बताया कि ये मेरा ऑफिस था, ये चाबी इसको खोलते, इस ताले को उसके पिछले जन्म के परिवार के पास भी लेके गया, पिछले जन्म की उसकी बीवी, पिछले जन्म का उसका बेटा, ये इतना सा। तो इन्होंने ये सब पास्ट लाइफ मेमोरीज, ये सारे कुछ उनके किताब की क्लिपिंग्स हैं, जहां पर ये फैमिलीज ने, जैसे ये एक मैं बताया था कि जो बीच में बच्चा बैठा है गोद में, तो वो जिसके गोद में बैठा है वो पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी, पीछे जो फोटो है ना, तो वो व्यक्ति अपने पत्नी को ही गोद में लेके बैठा है इस जन्म में। तो ये सारे उदाहरण उनकी पुस्तकों में हैं। तो इससे भी क्या साबित हो रहा है, ये साइंटिफिक उदाहरण से भी क्या साबित हो रहा है कि हमारी ये जो स्मरण शक्ति है ये इतनी शक्तिशाली है कि यदि ये शरीर भी खत्म हो जाए, और शरीर खत्म होना मतलब गरुड़ पुराण के अनुसार इतना त्रासदायी होता है मृत्यु के समय ये शरीर छोड़ना आत्मा को, उस क्या कहते सदमे के बाद भी, और उसके बाद जो पैदा होता है व्यक्ति उसका भी जो सदमा होता है, मतलब जो दुख होता है, दर्द होता है, उसके बाद भी उसे याद रहता है, कितनी पावरफुल है ये स्मरण शक्ति हमारी, ये इन उदाहरण से समझ में आ रहा है। अब यदि हम शास्त्रों से कुछ उदाहरण लें पास्ट लाइफ मेमोरी के, तो गजेंद्र का उदाहरण कि गजेंद्र एक हाथी के शरीर में वो ऐसे ऐसे श्लोक प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर रहे हैं कि जिनके ऊपर बड़े बड़े विद्वान टीका लिखे हैं। अब यदि आप बाहरी दृष्टिकोण से देखो तो बड़े बड़े विद्वान मनुष्य वो एक हाथी की प्रार्थनाओं के ऊपर टीका लिख रहे हैं, हंसी आएगी हमें, लेकिन क्यों, क्योंकि वो हाथी था लेकिन उसके अंदर जो स्मरण शक्ति पिछले जन्म की थी वो बरकरार थी इंद्रदुम्न महाराज के रूप में। फिर भरत महाराज, इनका उदाहरण है श्रीमद् भागवत में पास्ट लाइफ मेमोरी का, कि कि ये भी हिरण बन गए, लेकिन हिरण के योनि में भी क्या क्या उन्होंने गलतियां की, क्या क्या कैसे भक्ति की, वो सब कुछ उन्हें हिरण की योनि में भी याद रहा। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में इनकी कथा में कि भरत महाराज हिरण के रूप में ज्यादा कृष्ण भावना भावित थे, क्योंकि उन्हें ज्यादा टाइम मिलता था। कैसे कि अब मनुष्य होने के वजह से बहुत कुछ हमारे मनुष्य की क्रियाएं करनी पड़ती है, लेकिन जानवरों को ऐसी कोई क्रियाएं नहीं करनी पड़ती, तो ज्यादा समय उनको मिलता था, कोई ज्यादा नहाना धोना नहीं, खाना पीना भी बस घास फूस कुछ खा लिया। अब मनुष्यों को वही घास फूस खाना पड़ता है, एक पालक खाने के लिए कितना जतन करना पड़ता, लेकिन वही एक हिरण ऐसे खा लेगा पालक, तो कितना टाइम मिलता है भजन करने के लिए उसको। तो ये बता रहे थे कि क्योंकि स्मरण शक्ति थी, ऐसे हिरण में कोई गुण नहीं बताया गया, लेकिन स्मरण शक्ति जो बरकरार रखी भगवान ने भरत महाराज की, तो वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। नलकुंवर और मणिग्रीव का उदाहरण है कि हालांकि नारद मुनि ने उन्हें शाप दिया जो उन्होंने गलती की, वो शाप तो नहीं था, क्योंकि दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो नारद मुनि का अनुग्रह था उनके ऊपर, कृपा थी नारद मुनि की कि उन्हें पेड़ बनाया, और वो भी नंद भवन में, और भगवान की कृपा मिलने वाली है इस प्रकार से। लेकिन सबसे बड़ी कृपा नारद मुनि की इनके ऊपर थी कि नारद मुनि ने इनकी स्मृति बनाए रखी। कौन सी स्मृति? पेड़ की स्मृति नहीं, नलकुंवर और मणिग्रीव की स्मृति की। क्या गलती उन्होंने की, तो 100 वर्ष वो जो पेड़ की योनि में थे स्वर्गीय वर्ष, वो उस स्मृति के वजह से पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को शुद्ध कर लिए, जब तक कि भगवान ने अपनी दामोदर लीला नहीं की, तो पूरा वो रेडी हो गए थे एक्चुअल अप्रिशिएट करने के लिए भगवान की लीलाओं को। तो ये शास्त्रों में उदाहरण है इन सब पास्ट लाइफ मेमोरीज का। हम यदि माया जो एक्सटर्नल एनर्जी भगवान की है, इनकी दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है आवरणात्मिका शक्ति और एक है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंसी और पनिशिंग पोटेंसी। कि माया देवी क्या करती है, कवरिंग आवरणात्मिका का अर्थ क्या है जो आज का श्लोक में हम देख रहे हैं, स्मृति भ्रमशात कवर्स हमारी स्मृति को। कौन सी स्मृति को? कि क्या अच्छा है हमारे लिए, वो स्मृति को माया देवी कवर कर लेती आवरण, क्योंकि जब तक उसको वो कवर नहीं कर सकती तब तक प्रक्षेपात्मिका नहीं हो सकता। आज की भाषा में आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, ये दोनों कैसे समझेंगे आप। हम लोग जब ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनिंग में हम वैसे डॉर्मेटरी टाइप, उनको बैरक्स बोलते हैं, तो हमारे सारे कैडेट्स वो बैरक्स में रहते थे। हम तब इतने एक साथ अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग उनके आदतें, एक साथ रह रहे हैं तो बहुत कुछ हो जाता था, मुठभेड़ हो जाती थी, मन मुटाव या कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता था। तो एक तरीका मैंने देखा, एक हमारे सीनियर बैचमेट था, तो उनके अंदर वो उनके बैरक में कोई भी अगर कुछ सबके साथ मिलकर नहीं करता, हट के कुछ करता, तो उसको पनिशमेंट कैसे देते थे वो, क्योंकि अगर वो एक व्यक्ति जाकर उसे कुछ बोलेगा या मारेगा, कुछ करेगा ठीक करने, तो उसका कंप्लेंट चला जाएगा, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो वो लोग कंबल से ढकते थे पहले उसको, पूरा कंबल से ढक के। अभी कंबल से ढकने का यहां पे आवरणात्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंस, और फिर कंबल से ढकने के बाद फिर सब लात घूसा मारते थे, तो वो है प्रक्षेपात्मिका। तो पहले आवरणात्मिका फिर प्रक्षेपात्मिक, माया देवी यही करती है, फिर दिखाई नहीं देता कि कौन कहां से क्या मार रहा है। तो वैसे ही माया देवी पूरा कवर कर लेती, हमें सम्मोह में डालती, और उसके बाद में फिर ये योनि से वो योनि, ये योनि से वहां पर, भ्रमण भ्रमण प्रक्षेपात्मिका। तो यदि यही सिलसिला हमारा इतने जन्मों से चल रहा है तो कैसे इसमें ब्रेक लाएंगे? भगवान गीता में इसके विषय में कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम रिति सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं हरेक के हृदय में निवास कर रहा हूं, हर एक जीव के हृदय में, चाहे वो छोटी सी छोटी कोई चींटी क्यों ना हो या ब्रह्मा जी क्यों ना हो, भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में हम सबके, और उन्हीं के वजह से स्मृति ज्ञान और अपोहनम, इसे यहां पे ट्रांसलेशन किया गया है, रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, ये सब भगवान से ही सैंक्शन होता है। तो यदि भगवान यहां पर इसलिए बता रहे हैं कि जब हम भगवान की तरफ उन्मुख होंगे तो भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि जो प्रीति से सतत मेरा कीर्तन भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसे वो स्मृति देता हूं, मैं उसे वो बुद्धि देता हूं, और अपोहनम च भी, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, नॉलेज ऑफ कृष्णा एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ माया। माया क्या करती है? रिमेम्बरेंस ऑफ माया, नॉलेज ऑफ माया एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। लेकिन जब हम हमारे कॉन्शियस माइंड से, याद रहेगा माली जब कृष्ण भक्ति का बीज बोएगा और उसे सिंचन करेगा श्रवण कीर्तन से, तो उसमें अवश्य ही भक्ति लता उपजेगी। तो हमारे फ्री विल से जब हम भगवान की ओर उन्मुख होंगे, तब फिर हमारे अंदर जितना भी ये कचरा गोदाम में भरा हुआ है, वो भगवान कहते हैं कि मैं उसे रिप्लेस करता हूं। साफ करना तो छोड़ो, साफ तो करते ही हैं, भगवान कहते हैं आई रिप्लेस इट, आई रिप्लेस योर सबकॉन्शियस माइंड विथ माई थॉट्स, विथ माई पास्ट टाइम्स, विथ माई नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, हम अपने आप से प्रयास करें तो, आपने वो देखा वो आइसबर्ग नीचे कितना बड़ा था, हम अपने आस पे प्रयास करें तो उसको कितना हम कर्म कर पाएंगे, कितने जन्म लग जाएंगे और हमारे अंदर क्या शक्ति है, और बढ़ाते जाते हैं हम तो उसको। लेकिन यदि हम भगवान जो कह रहे हैं कि उनके उन्मुख हो जाएं, तो भगवान उसे रिप्लेस कर देते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि तुम अपने कॉन्शियस माइंड से, ये मन से सचेत अवस्था में तुम मेरा भजन करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा स्मरण करो, मुझे पूजो, मुझे नमस्कार करो। और जब हम ये जो आज का श्लोक और भगवान ने जो श्लोक कहे हैं इसके पश्चात, जो कि उसका इलाज है, उसका उपाय है, आज जो हमने समस्या ली कि कैसे क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश, कौन सी स्मृति का नाश? भगवान की भक्ति के स्मृति का नाश, जो हम शुरुआत में भगवान के भक्त रहे, आध्यात्मिक संसार में उसे जो छोड़कर आए, हम पुनः स्थापित उसे करते हैं भगवान, जब हम भगवान के उन्मुख होते हैं। और फिर स्मृति भ्रमशात, जो भगवान आज के श्लोक में कहे, उसके पश्चात होता है बुद्धि नाश। तो ये बुद्धिनाश किस प्रकार से होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।